नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर घटाया। राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 70% किया। इससे पश्चिम एशिया संघर्ष से वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों से 140 करोड़ भारतीयों को राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लॉकडाउन की अफवाहों को निराधार बताया। केंद्र ने आश्वस्त किया, देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध। कहा, पिछले एक दशक में घरेलू यूरिया उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पश्चिम एशिया संघर्ष पर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हुर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ाई और नेपाल में बालिंद शाह ने सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह निर्णय पश्चिम एशिया संकट के बीच लिया गया है। उन्होंने कहा कि डीजल के निर्यात पर 21 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 29 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर शुल्क लगाया गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल, डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन ATF की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्थिति के कारण पेट्रोल, डीजल और ATF की कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।
आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा और ATF बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक ATF मिलना आवश्यक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक अन्य निर्णय के अनुसार जो रिफाइनरियां विदेशों से सामग्री लेकर उन्हें भारत में परिष्कृत करती हैं और निर्यात के लिए भेजती हैं, उन्हें अब अधिक शुल्क देना होगा। लॉकडाउन की अफवाहों को निराधार बताते हुए श्रीमती सीतारामन ने लोगों को आश्वस्त किया कि कोविड महामारी के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन जैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया ईंधन की कमी से जूझ रही है और वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के निर्णय से 140 करोड़ भारतीयों को राहत मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिक चिंता यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक को अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी को अभूतपूर्व बताया।
इतना विपद काल में जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी और घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजल तथा विमानन टर्बाइन ईंधन पर निर्यात शुल्क लगाने के सरकार के निर्णय की सराहना की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी रुकावट के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय खुद इसका असर झेलने का विकल्प चुना है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कर राजस्व में भारी कटौती की है, जिससे तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर पर होने वाले भारी नुकसान को कम किया जा सके। सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70% करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20% आवंटन इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम प्रधान उद्योगों को दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पाइपलाइन गैस विकल्प नहीं है। श्री पुरी ने कहा कि जहां दुनिया के अन्य देश 4 दिन के कार्य सप्ताह, स्कूल और कार्यालय बंद करने और ईंधन की कीमतों में 20-30% की वृद्धि जैसे कई कड़े ईंधन संरक्षण उपाय कर रहे हैं, वहीं भारत ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता और सामर्थ्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पश्चिम एशिया संघर्ष पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और राज्यों की तैयारियों तथा योजनाओं की समीक्षा करेंगे। एक रिपोर्ट।
सूत्रों के अनुसार बैठक में टीम इंडिया की भावना से समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट किया था। श्री मोदी ने कहा था कि सरकार पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने सदन को बताया था कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा आयात के अपने स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। इससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो गई है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने बताया है कि देश में पिछले एक दशक में यूरिया का घरेलू उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। आज लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए 2014 से गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, रामागुंडम और पानागढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर कई नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि खरीफ मौसम के लिए देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जहाँ तक खाद का सवाल है, फर्टिलाइजर का सवाल है, माकूल पर्याप्त खाद की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है और हमारे रिजर्व्स हैं और कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल ही सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बातचीत की है, किसानों को सही समय पर खाद जितनी चाहिए वो मिलेगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लगभग 30% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमन 2000 के अंतर्गत सभी पंजीकृत चिकित्सकों को रोगियों को जेनेरिक दवाएं लिखना और तर्कसंगत सलाह देने की प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है।
हमारा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का 2002 का रेगुलेशन है, उसके क्लॉज 1.5 के तहत हमने ये नियम बनाया है कि जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो जेनेरिक दवाओं को ही प्रेस्क्राइब करेंगे और नेशनल प्रिस्क्रिप्शन पर ध्यान देंगे। इस संबंध में हमारे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उन्हें DGHS की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन जारी किए जा चुके हैं।
लोकसभा ने संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय इस वर्ष मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। इन तीनों विधेयकों के माध्यम से ये नियम लागू होगा कि गिरफ्तार और जेल में बंद कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकता। सरकार ने कहा है कि लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों, अनुसंधान और विकास पहलों के कारण शुष्क भूमि और वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में 82% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की कृषि भूमि का 48% हिस्सा शुष्क भूमि है।
एक एक बूंद का हम ढंग से और सही उपयोग कैसे करें ताकि जो ड्राई लैंड वाले हमारे किसान हैं उनकी जो हमारी खेती है वो अच्छा उत्पादन दे सके, उस प्रयत्न को कर सके। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बना के उसमें भी किन किन तत्वों की कमी है ड्राई लैंड में भी, उसके हिसाब से जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतना ही केवल संतुलित उपयोग खाद का करें।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। श्री डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे। इस बीच हजारों अमरीकी सैनिक क्षेत्र के करीब पहुंच गए हैं। उधर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरी तरफ इसराइल ने हिजबुल्ला से लड़ने के लिए दक्षिण लेबनान में और अधिक सैनिक तैनात किए हैं। ईरान की राजधानी और कई शहरों में भारी हमले हुए हैं। श्री ट्रंप ने कहा है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होंगे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति के इस बयान को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया है, जिसमें श्री ट्रंप ने कहा है कि केवल वे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे दो व्यक्ति हैं जो हमेशा काम को अंजाम देते हैं और ये बात अधिकांश लोगों के लिए नहीं कही जा सकती। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के संसदीय दल के नेता श्री बालेंद्र शाह ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एक रिपोर्ट।
नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने श्री बालेंद्र शाह को संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 35 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में लगभग 2/3 बहुमत से जीत हासिल करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने उन्हें अपना संसदीय दल का नेता चुना। वे नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बालेंद्र शाह को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के नागरिकों के परस्पर हित और भारत नेपाल की मित्रता तथा सहयोग को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
रामनवमी का त्यौहार आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में इस उत्सव का मुख्य आकर्षण अयोध्या है।
रामनवमी के उत्सव के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रभु राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। लोग सरयू नदी और राम की पैड़ी में स्नान कर रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जैसे भजनों की धुन पर पूरी अयोध्या गुंजायमान है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह भगवान राम के अभिषेक के बाद ठीक दोपहर 12 बजे गर्भगृह में सूर्य तिलक हुआ। इसके बाद 56 भोग प्रसाद चढ़ाए गए और प्रभु की आरती हुई। मंदिर आज देर रात तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। आज शाम चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे एक और भव्य आयोजन होगा, जहां रामनवमी के उपलक्ष्य में लगभग 22 लाख दिए जलाए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन स्थित अपने कार्यालय से टेलीविजन पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की पूजा अर्चना की और सूर्य तिलक के दर्शन किए। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर घटाया। राज्यों के लिए वाणिज्यिक LPG का आवंटन बढ़ाकर 70% किया। इससे पश्चिम एशिया संघर्ष से वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों से 140 करोड़ भारतीयों को राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लॉकडाउन की अफवाहों को निराधार बताया। केंद्र ने आश्वस्त किया देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध। कहा पिछले एक दशक में घरेलू यूरिया उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पश्चिम एशिया संघर्ष पर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और नेपाल में बालेंद्र शाह ने सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।